जिस तरह कल्पना प्रमाण अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की, उसी तरह सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रगतिवाद की विशेषता है। कविता के क्षेत्र में भी प्रगतिवाद इसी दृष्टि से प्रकृति और मानव को देखता है। ग्राम्या की रचना करते समय जब पंत जी ने कहा था कि देख रहा हूँ आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से, सोच रहा हूँ जटिल जगत पर, जीवन पर, जनमन से, तो उन्होंने इसी सामाजिक यथार्थ दृष्टि की आधारशिला रखी थी। इन दृष्टि से सबसे पहले प्रगति पर दृष्टिपात किया और अपनी यथार्थवादिता का प्रमाण इस तरह दिया कि छाया प्रकृति के स्थान पर ग्राम्य प्रकृति के यथार्थ रूप का अंकन किया। उसने बादलों के छाया मेल के स्थान पर फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली वाली ग्रामश्री को अपनी कविता का विषय बनाया। दृष्टि बदलते ही दृष्टिबिंदु भी बदल गया है और साथ ही दृष्टि भी। दृष्टि आकाश से उतरकर धरती पर दूर से खींचकर अपने आसपास आ गई है। वह ग्रामश्री पहले भी थी, लेकिन छायावादी कवि का इस ओर ध्यान ही नहीं गया था। तब उसकी दृष्टि में लह लह पालक महमा धनिया, लाल लाल चित्तियाँ, पड़े पड़े पीले पीले मीठे अमरूद, अरहर सनई की सोने की किंगिड़ियों, तीसी की नीलम कली, सरसों की उड़ती भीनी तैलाक्त गंध जैसी सुंदर वस्तुएं नहीं भाई थी। लेकिन जब कवि ने देखा कि छाया तप के हिल कोरे से चौड़ी हरी तिमा लहराती, इंखों के खेतों पर सफेद कांसों की झंडी फहराती, तो यह सुछवि के छायावान की सांस वाले पल्लों को भूल गया। धरती का कवि त्रिलोचन या ग्रामश्री इस रूप में देखता है। सघन पीली उर्मियों में बोर, हरियाली सलोनी झूमती सरसों, प्रकंपित वात से अपरूप सुंदर, धूप सुंदर धूप में जगरूप सुंदर सहज सुंदर। इस उन्मुक्त सहजता के साथ ही केदारनाथ अग्रवाल की मस्त बसंती हवा की चेष्टाएं, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी ऊपर आम ऊपर उसे भी चकजोरा, किया कान में को उतर कर भाग में हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझे हिलाया झुलाया गिरी पर नकलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसो झुलाई न सरसो। और फसलों के स्वयंवर की झांकी देखिए, जिसमें एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बाधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। और इस गवाई दृष्टि से दृष्टि मिलाइए, यह ग्रामीण दृष्टि धीरे धीरे विकास क्रम में किस प्रकार सामान्यता से अपनी जनपद विशेषताओं के उन्मुख हुई, इसे मिथिला के कवि नागार्जुन ने इस स्मृति चित्र में देखिए, जो सिंध प्रवास की वेला में आंखों में खिंच जाते हैं। याद आता मुझे वह अपना वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियां और आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और तालम मखान, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, आते वेणु वन वे नीलिमा के निलय अति अभिराम। नागार्जुन के मैथिली बोली में लिखे कविताओं में मैथिल प्रकृति के स्थानीय विशेषताएं अधिक उभर कर आई हैं। एक बार प्रकृति पर यह प्रगतिशील दृष्टि देखें और फिर प्रगतिवादियों के प्रगति चित्रों को इनकी तुलना में रखें, तो एक ही स्वस्थ सामाजिक और दूसरे की कुंठित व्यक्तिता का अंतर स्पष्ट हो जाता है। कहा तो सुंदर धूप में सरसों के सघन पीली उर्मियों को देखकर त्रिलोचन सोचते हैं कि क्या कभी मैं पा सकूंगा इस तरह इतनी तरंगी और निर्मल आदमी का रूप सुंदर धूप सुंदर। और कहा आगे की उजली लालिमा मालती भी गंध के डोरे डालती प्रतीत होती है, और उसे देख इस अंतर गुहावासी कवि के मन में दुबकी है हुलास ज्यो पर छाई हो चोर की, कहाँ वह स्वस्थ चित्त और कहाँ यह कुंठित मन। गांव के कलंगी मौर वाले बाँ वाले कासों पर प्रयोगवादी कवि की भी दृष्टि जाती है, लेकिन वह वहाँ केवल पिकनिक की गरज से जाता है और आँख मार कर चला आता है। प्रगतिशील कवि गाँव के बाहर भी खेतों का चक्कर लगाकर लौट नहीं आता, वह चुपके से संध्या के बाद गांव के भीतर घुस जाता है और घूमते घूमते उसके पैर तथा दृष्टि इस विषाद को चित्र पर जाकर रुक जाती है। माली को मड़ई से उठ नभ के नीचे नभसी धुमाली, नंद पवन में तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली, बत्ती जला दुकानों में बैठ सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिमसी ऊँग रही लंबी अंधियारी। धुआं अधिक देती है टिनकी ढिबरी, कम करती उजियाला, मन से कड़ा उसाद क्रांति, आँखों के आगे बुनती जाला। कप कप उठते लौके संग कातर उर क्रंदन, मुख निराशा, क्षीण ज्योति ने चुपके से गोपन मन को दे दी हो भाषा। और इसी ज्योति के प्रकाश में कवि प्रकृति के बीच से गांव में रहने वालों के जीवन में प्रवेश करने की चेष्टा करता है। यहाँ उसे अनेक प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। कहीं चमारों कहारों धोबियों का नाच दिखाई पड़ता है, तो कहीं ग्राम देवता के समक्ष उसका श्रद्धा समर्पित जीवन पड़ा मिलता है। अपने रास रंग में भी ये दलित किसान जीवन की वास्तविकता नहीं भूलते और जमींदार के कार्य पर स्वांग करते हुए टीका टिप्पणी कर भी बैठते हैं। इस परिक्रमा में कवि की दृष्टि सहसा वर्ग सभ्यता के मंदिर के निचले तल के दो वातायनों पर जाती है, जो ध्यान से देखने पर किसान की दो आंखें ज्ञात हुई। अंधकार की गुहा से रेखी उन आंखों का तम दिखाई पड़ा। उन आंखों में उस किसान के बेदखल हुए खेतों को लहराती हरियाली दिख गई, और फिर कारकुनों की लाठी से मारा गया जवान लड़का, बिना दवा दर्पण के स्वर्ग चली जाने वाली गृहिणी, दुधमोही बिटिया, कोतवाल द्वारा धर्षिता विधवा, पतोहू कुर्क हुई धवरी गाय, सब कुछ साकार हो उठा। और इस याद में फिरा कवि को दया के भूखी आंखें ऐसी लगी जैसे तुरंत शून्य में गढ़वा चितवन तीखी नोग सदृश बन जाती। प्रयोगवादी कवियों की वे आंखें नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि उनसे बचकर चलते हैं। यदि कभी इत्तफाक से उन आंखों से आंखें मिल भी गईं तो उनकी ज्योति से चौधरी आकर बंद हो जाती है। प्रगतिशील कवियों की इस तरह उनमें साहस ही नहीं है कि उन आंखों में झांक कर किसान के जीवन को देख सकें। गांवों के जीवन में घुसते ही प्रगतिशील कवि अपनी व्यक्तिकता भूलकर गांव में रहने वाले तरह तरह के लोगों को देखता है और उनका उरेहता है, चित्र उरेहता है। अहिर की निरक्षर लड़की चंपा, भोरई केवट, प्राइमरी स्कूल के मास्टर दुखरन झा, चना चबेना खाने वाला चंदू, चित्रकूट के बौणम यात्री वगैरह वगैरह, इनमें से एक चित्र देखिए। यह नागार्जुन के दुखरन झा और यह है उनका स्कूल। घून गाय शीरों पर की बारह खड़े विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर विस्तुया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में पांच तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। क्यों वह उसकी तनख्वाह से पूछिए। प्रयोगवादी कवि इतनी आत्मस्थ और अहनलीन रहता है कि उसका ध्यान आदम के इन सांचों की ओर जाता ही नहीं। उसे अपने दर्द के सामने दूसरे के दुख दर्द की ओर आंख उठाकर देखने की फुर्सत नहीं, लेकिन उन्हें दुख दर्द भी क्या है, वह दर्द केवल प्रेम की अतृप्ति और अप्राप्ति का दर्द है। प्रयोगवादियों में बहुत कम कवि ऐसे हैं जो गहराई में बैठकर अनुभव कर सके कि और भी दर्द हैं दुनिया में मोहब्बत के सिवा। व्यक्तिवादी कवि के मन में उस तरह के विचार कभी भी आ सकते हैं, और वह भी रघुवीर शाह जैसे कुछ एक ही कवियों में, माधवी या और भी जो कुछ तुम्हारे नाम हो, तुम एक ही दुख दे सकी थी, फिर भला ये सब किसने दिए हैं, जो मुझे हैं और दुख वे तुम्हें भी तो हैं, लेकिन ये और दुख कौन से हैं, इन्हें प्रयोगवादी कवि साफ साफ नहीं कहता, क्योंकि कहना नहीं चाहता। कवि गजा कुमार माथुर जैसे प्रयोगवादी कवि शहरी मध्य वर्ग के इन और दुखों को भी कहना चाहते हैं, पर वे भी अस्पष्ट ढंग से उसे थकान कहकर रह जाते हैं। शाम की धूप की रंगीनियों से आंखें रंजित करने और उसकी गरमाई में आंखें सूखने के बाद भी ऑफिस से लौटते हुए बाबुओं की साइकिल के पीछे बधी हुई भूखी फाइलों और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए खरीदे गए मामूली सामानों से भरी टोकरी किस्मत पर दृष्टि दौड़ाते हैं, लेकिन उससे कतरा कर कभी तुरंत वहां भाग जाता है जहां घर के उस फूल पर यह मन की बूंद ठहरना चाहते सुध दुख होकर, जिससे उतरे थकान तन मन की डूब कर रात की मिठासों में। लेकिन यह धूप निम्न मध्य वर्ग के प्रगतिशील कवि के जीवन पर कैसी रोशनी डालती है, इसे गुजा कुमार माथुर अपने मित्र नागार्जुन की इन पंक्तियों में देखें। पूस मास की धूप सुहावन, घिसे हुए पीतल सी पांडुर, पूस मास की धूप सुहावन, स्तन पाई निरोग गौर छवि, शिशु के गालों जैसी मनहर, पूस मास की धूप सुहावन, पटी दरी पर बैठा है चिर रोगी बेटा, राशन के चावल से कंकड़ बीन रही पत्नी बेचारी, गर्भ भर से अलस शिथिल है अंग अंग, मुंह पर उसके मटमैली आभा, छप्पर पर बैठी है बिल्ली, किसके घर से जाने क्या कुछ खा आई है, चला चला कर जीव स्वाद लेती होठों का। इधर घर में कोयला भी नहीं है और यह तय है कि पूस मास की धूप से आवन चावल नहीं सिझा सकती है, रोटी नहीं सेंक सकती है, भाजी नहीं पका सकती है। इसीलिए जहाँ कहीं से एक कठन्नी लानी होगी, वरना इस चूल्हे के मुंह पर फिर मकड़ी का जाला होगा। प्रयोगवाद की रूमानी दृष्टि में और प्रगतिवाद की यथार्थवादी दृष्टि में यह अंतर है। ऐसा नहीं है कि प्रगतिशील कवि को प्रेम संबंधी दुख दर्द नहीं सताता सताता है। वह भी आदमी है और इस व्यवस्था में उसे जहाँ आर्थिक कष्ट है, वहाँ इन आर्थिक कष्टों के कारण अथवा उनके अलावा अन्य प्रकार की भी मानसिक व्यथाएं होती हैं। घोर निर्जनता में उसे अपनी प्रिया का सिंदूर तिलकित भाल याद आता है और संपूर्ण प्रयोगवादी कवि में इस सिंदूर तिलकित भाल की शुचिता के दर्शन नहीं हो सकते। प्रगतिशील कविता में जो स्वस्थ सामाजिक पारिवारिक प्रेम व्यक्त हुआ है, वो प्रयोगवाद के स्वैराचार और कुंठा भरे काव्य में नहीं मिल सकता। प्रगतिशील कवि जहाँ स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करता है, वहाँ भी संयम और स्वस्थ मनोवृत्ति का परिचय देता है। स्फूर्तिदायक प्रथम परिचय का एक चित्र त्रिलोचन के कुंठाहीन हृदय में देखिए। यूं ही कुछ मुस्का कर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी, था पत्पर में भूला भूला फूल उपेक्षित कोई फूला, जाने कौन लहर थी उस दिन तुमने अपनी याद जगा दी। कभी कभी यूं हो जाता है गीत कहीं कोई गाता है, गूंज किसी उर में उठती है तुमने वही धार उमगा दी। जड़ता है जीवन की पीड़ा निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के शर से दूर भगा दी। प्रगतिशील कवि का प्रेम इतना स्वस्थ और स्फूर्तिदायक इसलिए है कि वह प्रेम को संपूर्ण जीवन का अंग समझकर अनुभव करता है। प्रयोगवादी कवि की जिस तरह संपूर्ण जीवन से प्रेम संबंध को काट कर देखने का आदि नहीं है, जिस तरह उसके प्रेम संबंध को सामाजिकता सुधारती चलती है, उसी तरह उसका प्रेम संबंध सामाजिक भावना को भी बदल देता है। त्रिलोचन का अनुभव है कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, और जगत जीवन का प्रेमी सौंदर्यमय दृष्टि से केवल उसकी सुषमा को ही नहीं देखता है, बल्कि उसकी सुषमा पर गिरती हुई छाया को देखता है और फिर उस सर्वग्रासी छाया को दूर करने की चेष्टा में ही अपनी निजी पीड़ा का भी अंत समझता है। इसीलिए प्रगतिशील कवि की निराशा में भी आशा की दीप्ति होती है। प्रयोगवादी कवि की तरफ वह दुख या सुख भी अकेले अकेले नहीं झेलना चाहता है। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है यह धूल में कि फूल में मिला है तो मिला है यह मोल तोल इसका अकेले कहा नहीं जाता, ओखी धार दिन की अकेले बहा नहीं जाता। यही सामाजिकता प्रगतिशील कवियों में वास्तविक देश प्रेम जगाती है। अहलीन कवियों प्रगतिशील कवियों का ध्यान शायद ही कभी देश प्रेम की गीत लिखने की ओर जाता हो, क्योंकि वे देश प्रेम को सबसे पुरानी चीज समझते हैं। उनके विचार से यह पूर्ववर्ती राष्ट्रीय जागरण वाले युग की भावना है और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय के नाम पर वस्तुतः वे अराष्ट्रीयता का प्रचार करते हैं। विदेशी कवियों के भाव रूप में वे इस तरह रंगे हुए हैं कि उनकी कविता में अपने देशज विशेषताएँ नकड़ हैं और उनमें अपनी धरती का रस नहीं है। गमले के फूल की तरह इनकी खाद और पौधा सब कुछ विदेशी है, केवल गमला देशी है। प्रगतिशील कवि इस अराष्ट्रीयता के विपरीत अपने गांव और जनपद को प्यार करते हैं और उसी प्यार के माध्यम से वे देश प्रेम की व्यंजना करते हैं। पहले के देश प्रेम संबंधी कविताओं में इनकी यह विशेषता है। पहले की देशभक्ति सामान्योन्मुखी थी तो ही प्रगतिशील युग की देशभक्ति विशेषोन्मुख है और इसीलिए अधिक ठोस और वास्तविक है। यह विशेष के भीतर से ही सामान्य को प्रकट करती है। प्रगतिशील कविता का यही यथार्थवाद है। नागार्जुन ने अपनी जन्मभूमि तरौनी तथा मिथिला की याद में जो दर्जनों कविताएं मैथिली और कड़ी बोली में लिखी हैं, उनसे उस राष्ट्रीयता का अनुमान लगाया जा सकता है। आर्थिक परिस्थितियों के कारण निरंतर प्रवासी का सजीवन बिताने वाले नागार्जुन के हृदय में मिथिला के लिए इतनी हुक उठती है, उसे सहृदय ही अनुभव कर सकते हैं। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे कवि को अपनी मिथिला की याद हो आती है और वह सोचता है कि यदि हमारे पास भी बाप दादों की जमीन होती तो घर छोड़कर रोजी के लिए बाहर न निकलना पड़ता और तब अपनी जन्मभूमि से ऐसा दुस्सह विच्छेद भी न होता। कभी 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 थोड़े समय के लिए अपनी जन्मभूमि के दर्शन के लिए जाता है और तब उसे अनुभव होता है कि जैसे बिका हुआ बैल अपने पहले वाले बथान पर आकर उसे सूंघता है और आह भर कर छोड़ता है, उसी तरह मुझे भी यह धरती जल्द ही छोड़नी पड़ेगी। दूर देश सिंध में पड़े पड़े वह एक बार तड़प कर गा उठता है। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी करेगा वह कभी कुछ ना विरोध। यह भी सच है न मैं असहाय, यह भी है व्यक्ति और समुदाय। किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय, मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध है अपनी चाल। और यह मातृभूमि प्रेम राष्ट्रीयता तथा अंतर्राष्ट्रीयता का विरोधी नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि प्रगतिशील कवि जिस ममत्व से बंगाल के साथ हाथ मिलाता है, उसी ममत्व से केरल के साथी को भी भेंटता है, और उसी स्नेह के साथ नए चीन, सोवियत यूनियन, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा अन्य देशों की जनता को छाती से लगाता है। इस तरह प्रगतिशील कविता ने संसार में सुख शांति ले आने के लिए संसार भर की जनता की आकांक्षाओं के साथ हमारी आकांक्षाओं को जोड़ दिया है। इतने बड़े कार्य का श्रेय प्रगतिशील कविता को ही है। आत्म केंद्रित प्रयोगवादी कविता को इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए उनकी कुंठा इस विश्व भावना से कहीं बड़ी और महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील कवि जानता है कि वास्तविकता सुख शांति अभी हमारे जीवन में नहीं आ सकी है, फिर भी जब वह दुनिया के दो तिहाई भाग में सुख शांति को वास्तविक रूप धारण करते देखता है और पाता है कि उसके लिए जो भविष्य है वह कुछ लोगों के लिए वर्तमान बन चुका है, तो भविष्य की असंभाव्यता पर से उसका विश्वास उठ जाता है और मानव विजय की आशा उसमें नूतन कल्पना शक्ति का संचार करती है। इसलिए प्रयोगवादी कवि जहाँ एकदम रुद्ध यथार्थवादी है, वहाँ प्रगतिशील कवि यथार्थ की सीमाओं से मुक्त होकर कल्पना की उदात्त सृष्टि करता है। वह सुनहरे सपने भी देखता है। सपना तो प्रयोगवादी कवि भी देखता है, लेकिन उसका दिवा स्वप्न प्रायः रुग्णता और पलायन के भावों से भरा होता है, जबकि प्रगतिशील कवि का सपना उसे संघर्ष करने की शक्ति देता है। वह स्फूर्तिदायक और वीरत्व व्यंजक होता है। प्रगतिशील कविता के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उसमें कला पक्ष की अवहेलना की जाती है। इसका यह अर्थ है कि प्रगतिशील कवि प्रयोगवादियों की तरह कला पक्ष को बहुत जोर नहीं देते तो यह ठीक है। बहुत सजाव श्रृंगार और पेचीदगी प्रगतिशील कविता में नहीं मिलती। अपनी बात को सुलझाकर उसे कितने सहज ढंग से कह दिया जाए, यही प्रगतिशील कवि का प्रयत्न रहता है। उसके भावों की तरह भाषा की गांठ रहित होती है। प्रगतिशील कवि अपना हर शब्द और हर वाक्य चमत्कारपूर्ण बनाने की चेष्टा नहीं करता। यदि दो चार शब्द बेकार भी आ जाए तो वह उन्हें निकाल देने के लिए बहुत चिंतित नहीं होता। उसका विश्वास है कि जबरदस्त भाव भाषा की ढीली पोली के बावजूद अपने को प्रकाशित करते रहते हैं। इसलिए प्रगतिशील छंद मुक्त छंदों के बंद प्रयोगवादी कविता की अपेक्षा काफी शिथिल मिलेंगे, लेकिन यही सहजता उनकी शोभा है। प्रयोगवाद की कटी छटी नव कविता के मुकाबले प्रगतिशील कविताएं प्रायः अनपढ़, बेतरतीब, उगी हुई घासों और फूलों की वनस्थली प्रतीत होती है, लेकिन उनके उस जंगलीपन में भी आकर्षण है। प्रगतिशील कविता की तरह सरलता ही है और रचयिता के लिए दुस्साध्य है। इसे देखकर सभी सोचते हैं कि इसे लिखने में क्या है, लेकिन लिखने चलते हैं तो आटा दाल का भाव मालूम हो जाता है। तुलसीदास के शब्दों में जी में मुह मुकुर मुकुर निज पानी, गहीं न जायस अद्भुत बानी। प्रगतिशील कवि जब व्यंग्य लिखते हैं तो उनकी भाषा का बांकापन देखने लायक होता है। हिंदी कविता में व्यंग्य काव्य का जितना महत्व सुंदर विकास प्रगतिवाद में हुआ उतना कहीं नहीं। नागार्जुन केदार के नुकीले व्यंग्य कितने प्रभावशाली हैं इसे जनता के दुश्मन भी जानते हैं। हिंदी कविता में व्यंग्य या तो सन्नी निराला ने लिखे या नागार्जुन और केदार ने। नागार्जुन के व्यंग्य का एक नमूना है। नेता लोग जो अक्सर यह कहते हैं कि हमारे यहाँ भूख या अकाल नहीं है, उस पर यमराज तथा एक मरे हुए मास्टर की बातचीत के द्वारा यहाँ कितना व्यंग किया गया है। नरक के मालिक यमराज प्रेत का बयान लेते हुए पूछते हैं कि कैसे मरा तू, जवाब में नाच कर लंबे चमचों सा पचगुरा हाथ, रूखी पतली किटकिट की आवाज में प्रेत अपना पूरा पता बताते हुए करेमों की पत्तियां खाने की आधी ही कथा कह पाता है कि दंडपाणि महाकाल अविश्वास हंसी हंसकर कहते हैं, यहाँ टटकामा, बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने, वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे, यहाँ बंद। इस पर हद से ज़्यादा जोर डालकर प्रेत कहता है कि और भले नाना प्रकार की व्याधियां हो भारत में, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। और भाप का आवेश निकल जाने के बाद शांत स्मित स्वर में फिर कहता है कि जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सके यात जब पेचिस का हमला। छंदों के क्षेत्र में प्रगतिशील कवि जान बुझकर विचित्र धुन निकालने का प्रयोग तो नहीं करते, लेकिन यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि प्रगतिशील कवियों ने लोकगीतों के अनेक नई धुनों को कविता में पुनर्जीवित किया। इस दिशा में एकदम नए कवि जैसे केदारनाथ सिंह, रामदर्श मिश्र आदि ने काफ़ी सफलता दिलाई। नई तर्ज में लिखा हुआ केदारनाथ अग्रवाल का यह सीधा साधा गीत चुने हुए थोड़े शब्दों में मार्मिक प्रभाव छोड़ जाता है। माझी न बजाओ बंशी मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता, जल का जहाज जैसे हल हल डोलता। माझी न बजाओ बंशी मेरा प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तृण टूटता, तृण का निवास जैसे बन बन टूटता। माझी न बजाओ बंशी मेरा मन झूमता, मेरा तन झूमता, तेरा तन झूमता, मेरा तन तेरा तन एक बन झूमता। प्रगतिवाद के सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण कविता में जितना परिवर्तन हुआ उतना कहानी उपन्यास के क्षेत्र में नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि प्रेमचंद के युग से उपन्यास में यथार्थवादी प्रवृत्ति का उदय हो गया था। अपनी कहानियों और उपन्यासों में प्रेमचंद ने शुरू से किसान और मध्यवर्गीय मध्य पुरुषों का यथार्थ जीवन का चित्रण किया था। प्रेमचंद के ही समय से किस तरह परिस्थितिवश किसान मजदूर बनने के लिए विवश हो गया था, इसे भी उन्होंने गोदान में चित्र दिखला दिया था। इसलिए प्रगतिवाद के उदय से अधिक ये उम्मीद थी कि प्रेमचंद की परंपरा को और भी अच्छी तरह से आगे बढ़ाने की दृष्टि मिलेगी। प्रेमचंद ने आरंभिक युग और सुधारवादी और आदर्शवादी विचारों से किस तरह क्रमशः छुटकारा पाया और अंत तक आते आते उनका दृष्टिकोण कितना स्पष्ट हो गया, इसे प्रेमाश्रम और गोदान की तुलना से अच्छी तरह समझा जा सकता है। वास्तविकता और विषय में उनकी समझ कितनी गहरी हो गई थी, इसका पता केवल एक उदाहरण से चल सकता है। प्रेमाश्रम के बलराज और मनोहर जैसे किसानों को उन्होंने बहुत अधिक विद्रोही दिखाया था, लेकिन होरी को उन्होंने संतोष, धैर्य, सहनशीलता तथा अंधविश्वास का पुंज दिखलाया जो भारतीय किसानों की जाति विशेषता है। यदि किसान आंदोलन की ओर ध्यान दे तो प्रेमाश्रम के 17-18 वर्षों के बाद दिखे हुए गोदान में किसानों को अधिक विद्रोही दिखाना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि तमाम आंदोलनों के बावजूद भारतीय किसान काफी संतोषी, भाग्यवादी और धैर्यवान रहा है। अपने अनुभव से प्रेमचंद ने तथ्य को अंत में समझा और होरी के रूप में उन्होंने ऐसे ही किसान का चित्रण किया जो तमाम किसानों का प्रतिनिधि हो सका। इसके साथ ही उनकी सूक्ष्म दृष्टि से यह बात न छूट सकी थी कि इन वर्षों में किसानों के शोषण का ढंग अधिक बारीक हो गए थे। इससे भी जमींदार तथा दूसरे शोषक अधिक सतर्क हो गए थे। यथार्थदर्शी प्रेमचंद ने खूब अच्छी से प्रचंड रूप में होरी के शोषित होने का चित्रण किया है। तब से भारतीय किसान के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं और शोषित करने के तरीके बदल गए हैं। शोषकों में भीतर और तम संबंधी अंतर आ गया है। दूसरी ओर किसान थे अपेक्षाकृत असंतोष की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इस परिवर्तित और जटिल वास्तविकता को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि की जरूरत है और प्रगतिशील जीवन दृष्टि से निस्संदेह इस विषय में लेखकों की सहायता की। नागार्जुन के बलचन्मा, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ और भैरव प्रसाद गुप्त के गंगा मैया जैसे उपन्यासों में किसानों की ऐसी ही जिंदगी का वास्तविक चित्रण किया गया है। नागार्जुन ने एक और मिथिला के संघर्ष किसानों को मूर्तिमान किया है और भैरव ने बलिया के विद्रोही किसानों को प्रेमचंद के बाद किसानों की जिंदगी का सफल चित्रण करने वाले अकेले प्रगतिशील लेखक हैं। मजदूरों की जिंदगी पर छोटी छोटी कहानियां तो इस बीच बहुत सी लिखी गई, लेकिन उपन्यास देखने में कोई नहीं आया। इसका कारण संभवतः यही है कि अब भी भारत कृषि प्रधान देश है। प्रगतिवाद के युग में कथा साहित्य का आरंभिक मध्यवर्ग को लेकर लिखा गया यशपाल, अश्क, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रांगे राघव, राधा कृष्ण वगैरह ने मध्यवर्गीय जीवन से ही अपने पात्र चुने और हर तरह के पात्र चुने। अश्क की गिरती दीवारें और गर्मनाक, यशपाल के देशद्रोही और मनुष्य के रूप, अमृतलाल नागर के सेठ वाकेलाल, रांगे राघव का घरौंदे, अमृत का बीज, विष्णु का ढलती रात आदि उपन्यासों के नायक तथा इतर पात्र प्राय मध्यवर्ग के हैं। सन 45-35 के बाद मध्यवर्ग के जीवन में काफी परिवर्तन हुआ और इन लेखकों ने इसका यथार्थ चित्रण करने का प्रयास किया। सब समय इन्हें सफलता मिल ही गई हो यह कहना कठिन है। अक्सर ऐसा हुआ है कि इनके नायक ने स्वत हो गए और ऊंचे ढंग से रोमांस में डूब चले हैं। कभी कभी नायक को वस्तु स्थिति से अधिक आगे और विद्रोही दिखाने की चेष्टा की गई। इन सब के बावजूद यह कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्तिवादी और सेक्सवादी लेखकों को छोड़कर इस युग के अधिकांश उपन्यासकारों और कहानीकारों ने भरसक मध्यवर्ग की यथार्थ कमजोरियों को चित्रित करने की कोशिश की है। कथाकारों के प्रगतिवादी दृष्टिकोण ने सामाजिक यथार्थवाद के दो खतरों से बचाने का प्रयास किया है। एक खतरा तो मनोविश्लेषणवाद की ओर से है, जिसमें या तो शेखर और भुवन जैसे सर्वथा अहमवादी और असाधारण पात्रों की सृष्टि की जाती है, अथवा इला चंद्र जोशी के शख्स रस अद्भुत नायकों का निर्माण होता है। इन दोनों प्रकार की असाधारणताओं से उभर कर प्रगतिवाद ने साधारण पात्रों के निर्माण का गुरु बताया। इसके विपरीत इस विचार प्रधान युग में कुछ लेखकों ने व्यक्तित्वहीन सर्वथा निर्जीव पात्रों के सहारे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहस मुबाहिशा से भरा हुआ उपन्यास लिखा। प्रगतिवाद को भी इस शुद्धेश्वरता का विस्तार कहा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह गलती दूर कर ली गई। प्रगतिवादी दृष्टिकोण के प्रभाव से कुछ उपन्यासकारों का ध्यान ऐतिहासिक कथानकों की ओर गया और इस दिशा में यशपाल की दिव्या तथा राहुल जी के वोल्का सुगंगा, सिंह सेनापति, जय यौधे आदि श्रेष्ठ प्रयत्न हुए। अतीत की विकासोन्मुखी शक्तियों को पहचान कर उन्हें उपन्यास के सजीव पात्रों के रूप में मूर्तिमान करके इन ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने वर्तमान युग के मुक्तिकामी जन समुदाय को शक्ति और स्फूर्ति दी। इस क्षेत्र में अपने अपने ढंग से जो अन्य लेखकों ने काम किया, उसमें झांसी की रानी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी और भारतीय गंगा के लेखक शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का स्थान महत्वपूर्ण है। इस युग में प्रगतिवादी कवि, जिससे पद्यमूल संस्कार के विरुद्ध आरंभ से ही संघर्ष होता रहा और फिर भी उसे यथोचित सफलता नहीं मिल सकी, वह है उपन्यासकारों के नारी संबंधी बुर्जुआ संस्कार। राहुल, यशपाल और रश्क जैसे जागरूक तथा प्रगतिशील उपन्यासकार भी अपनी सेक्स संबंधी कमजोरी से मुक्त न हो सके। इनमें से यशपाल ने यह विकृति सबसे अधिक है। अश्क के गर्म राख उपन्यास में लगता है कि लेखक गिरती दीवारों के मलबे से निकलने की कोशिश कर रहा है, फिर वह अश्लील यौन प्रसंग की योजना से न बच सका। राहुल जी इन दोनों लेखों से अपेक्षाकृत संयत है, लेकिन इनमें दिन पर दिन यह कमजोरी बढ़ती जा रही है, जैसा कि उनके नवीनतम उपन्यास स्वप्न मधुर से विदित होता है। वस्तुतः इस विषय में हमारे वर्तमान मध्यवर्गीय समाज की परिस्थिति इतनी भयंकर है कि जब तक कोई व्यापक जनजागरण नहीं होता, इस यौन विकृति से जल्दी निस्तार मिलना कठिन है। इतना होते हुए भी इसी युग में दूसरे अनेक लेखक ऐसे हैं जिन्होंने नारी का अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ चित्रण किया है। नागार्जुन की रतिनाथ की चाची इस दिशा में सफल प्रयत्न है। वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विष्णु प्रभाकर के नारी पात्र अधिक स्वस्थ, संयत तथा शक्तिशाली हैं। कुल मिलाकर कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद की अपेक्षा अधिक व्यापक और सफल हुआ, निसंदेह कहा जा सकता है। कविता, कहानी, उपन्यास इत्यादि के क्षेत्र में प्रगतिशील लेखकों ने जिस सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि से रचना कार्य किया, उसे आलोचना के क्षेत्र में एक सुनिश्चित ऐतिहासिक सामाजिक साहित्य सिद्धांत का रूप दिया गया। छायावादी और प्रयोगवादी दृष्टियों ने भी आलोचना के क्षेत्र में कुछ छिटपुट विचार रखे, लेकिन उन्होंने साहित्य संबंधी अपने विचारों को सुव्यवस्थित सिद्धांत का रूप नहीं दिया। इसके विपरीत प्रगतिवाद ने आलोचना के मान स्थिर किए और उसके अनुसार सामान्यतः समूची साहित्य परंपरा का और विशेष रूप से अपने समकालीन साहित्य का भी मूल्यांकन किया। इस तरह प्रगतिवाद ने सैद्धांतिक और व्यावहारिक समीक्षा के द्वारा साहित्य को बदलने और विकसित करने में नेतृत्व किया। प्रगतिवाद से पूर्व हिंदी आलोचकों में मुख्य तुलना और व्याख्या का कार्य हो रहा था। आलोचक प्रायः साहित्यिक कृतियों की यथाशक्ति व्याख्या करके उसमें निहित सौंदर्य का उद्घाटन करते थे। आचार्य शुक्ल की गूढ़ दृष्टि से ने व्याख्या के इस कार्य में अद्भुत क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने अपने सहज सौंदर्य बोध और गहरी रस ग्रहणी शक्ति के द्वारा लेखकों और साधकों के मन में उच्च कोटि के साहित्य संस्कार अथवा रुचि का बीज रोपण किया। उनके प्रयत्न से लोगों के मन में चमत्कार और वास्तविकता में अंतर करके साहित्य को परखने की क्षमता पाई। लेकिन आचार्य शुक्ल ने इससे भी आगे बढ़कर एक और काम किया। उन्होंने अपने सौंदर्य बोध तथा रसानुभूति को शुद्ध आनंद की स्थिति से ऊपर उठाकर लोक मंगल के उदात्त सामाजिक पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया। उनका विचार था, साहित्य केवल आनंद देने की वस्तु नहीं है, बल्कि उसे लोक मंगल के लिए प्रयत्न ही करना चाहिए। इसी दृष्टि से उन्होंने तुलसीदास के साहित्य को सूरदास की रचना से श्रेष्ठ ठहराया, क्योंकि उनके विचार से तुलसी में सूर की अपेक्षा लोक मंगल की भावना अधिक थी। शुद्ध आनंद वाले साहित्य को भी लोक मंगल की सिद्धावस्था कहते थे और सामाजिक कल्याण वाले साहित्य को लोक मंगल की साधनावस्था। अपनी इस स्थापना के द्वारा शुक्ल जी ने समीक्षा को निष्क्रिय व्याख्या से आगे बढ़कर सक्रिय परिवर्तनकारी सामाजिक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। आवश्यकता इस कार्य को बढ़ाने की थी और प्रगतिवाद ने आगे बढ़ाकर शुक्ल जी की इस विरासत को यथोचित रूप देने का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया। प्रगतिशील आलोचकों ने अनुभव किया कि ऐसे समय पर जबकि सामाजिक संकट गहरा हो गया और देश के बहुसंख्यक लोगों का जीवन इतना विषाक्त कर दिया गया हो, साहित्य के ब्रह्मानंद की चर्चा करना साहित्य में शुद्ध आनंद लेने का उपदेश देना उनका अपमान करना है। इसलिए प्रगतिशील लेखकों ने आवाज लगाई कि साहित्य का मुख्य देश और जनता को संघर्ष के लिए शक्ति देना तथा उस संघर्ष में विजय प्राप्त करके मुक्त होने के लिए मार्ग दिखाना। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि शुक्ल जी के लोक मंगल में जो लोक था वह प्रगतिवाद में आकर जनता हो गया। यह परिवर्तन परिस्थितियों के अनुरूप ही था। भक्त वर्ग भावना अब अधिक स्पष्ट हो गई थी और ऐसे लोक मंगल को कुछ और स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। प्रगतिवाद ने अपने नाम के साथ यह संकेत कर दिया कि साहित्य प्रतिगामी प्रतिगामी अथवा प्रतिक्रियावादी भी होता है। प्रगतिशील शब्द सापेक्ष अर्थ का बोधक है। कोई भी घटना प्रवाह किसी भी तुलना में ही प्रगतिशील होगा। इस तरह प्रगतिवाद ने अपना ध्यान साहित्य प्रगतिवादी प्रतिक्रियावादी और प्रगतिशील तत्वों में भेद करने की ओर किया, क्योंकि समाज और साहित्य को प्रगति के लिए प्रतिक्रियावादी तत्वों की आलोचना करना और उन्हें मिटाना साहित्यकार का कर्तव्य है। इस दृष्टि से प्रगतिवाद ने संपूर्ण साहित्य परंपरा और फिर समकालीन साहित्य का विश्लेषण किया। लेकिन यह उद्देश्य जितना महान है उसकी पूर्ति उतनी ही कठिन है। सही ऐतिहासिक सूझ के बिना इसमें अनेक गलतियां हो सकती हैं और प्रगतिशील समीक्षा से भी ऐसी गलतियां हुईं। फिर भी औरों की तरह प्रगतिवादी लेखकों ने भी अपनी गलतियों से सीख ली। आरंभ में प्राचीन प्रतिक्रियावादी रूढ़ियों के साथ उन्होंने समस्त प्राचीन परंपरा को ही प्रतिक्रिया सिद्ध कर दिया। शुरू शुरू में रूढ़ी और परंपरा का अंतर न सूझा। उन्होंने धार्मिक आचरण में व्यक्त होने वाले पूरे भक्ति काव्य को उठा फेंका। उसमें छिपी हुई ऐतिहासिक जैसे वस्तु अथवा जनवादी भावधारा उन्हें न दिखी। इसी तरह छायावादी कविता की पलायन भावना का विरोध करते करते वैसे मुझे छायावाद की आलोचना करने पर उतारी हो गए, किंतु पीछे तुलसी साहित्य और छायावाद पर स्वस्थ प्रगतिशील समीक्षाएं लिखकर प्रगतिवादी आलोचकों ने प्रमाणित कर दिया कि सही ऐतिहासिक दृष्टि परंपरा का कितना से मूल्यांकन कर सकती है। इस दृष्टि से रामविलास शर्मा के तुलसीदास और निराला पंत संबंधी निबंध माननीय है। त्रुटियां इन निबंधों में भी हो सकती हैं, लेकिन इनसे नई दिशा में सोचने की प्रेरणा मिलती है। परंपरा का मूल्यांकन इतना कठिन कार्य है कि एक व्यक्ति अथवा युग का विचारधारा द्वारा उसका अंतिम निर्णय हो सकना असंभव है। इस विषय में शुक्ल जी जैसे समर्थ समीक्षक से भूली हुई हैं। फिर भी उस दिशा में प्रगतिवादी समीक्षा प्रणाली ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है वह है कि परंपरा के प्रतिगामी तत्वों को अलगा कर उनमें अविच्छिन्न रूप से प्रभावित और विकसित होने वाली प्रगतिशील तथा जीवंत तत्वों को उभार कर सामने रखा। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि साहित्य की प्रगतिशील परंपरा जनवाद की परंपरा है। इसकी मुख्य प्रेरक शक्ति जनता है, जो पुरोहितों महंतों राजाओं नवाबों बदमाशों सेठों और साहूकारों के अत्याचार झेलती भी जाति प्राण शक्ति को निरंतर जीवनदान देते हुए आगे बढ़ती जा रही है। परंपरा के ऐसे मूल्यांकन से नए वर्तमान परिस्थितियों में जनता तथा जनता के लेखकों को कितनी शक्ति प्राप्त है इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इस दृष्टि से समालोचना करके प्रगतिशील लेखकों ने अपने समकालीन साहित्य में भी फैले हुए आध्यात्मिक कुहासा कुंठावादी गानों और यौन कर्दम को साफ करने में कितना बड़ा कार्य किया यह किसी से छिपा नहीं। यदि प्रगतिवादी समीक्षा प्रणाली ने होती थी ये स्वस्थ साहित्यिक प्रवृत्तियां साहित्य के विकास में कितनी बाधा पहुंचाती कहना कठिन है। यह तो प्रगतिवाद के विरोधी भी मानते हैं कि प्रगतिशील आलोचकों ने साहित्य से स्वस्थ सामाजिक सुरुचि का संस्कार पैदा किया है और निर्माण कितना महत्वपूर्ण कार्य है इसे भी जानते हैं। समीक्षा के क्षेत्र में प्रगतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन यह है कि समीक्षा की मौलिक समस्या यह नहीं है कि कौन रचना कितनी सुंदर है। मौलिक समस्या यह है कि रचना में वह सौंदर्य शक्ति आती कहाँ से है। जब तक हम इस समस्या का उत्तर नहीं देते तब तक हम रचनात्मक समीक्षा करते ही नहीं, उसके बिना समीक्षा निष्क्रिय है। इस प्रश्न के उत्तर में भाववादी विचारक यह कहकर बरी हो जाते हैं कि रचना में सौंदर्य रचयिता को अपनी प्रतिभा से आता है और यह प्रतिभा लेखक की एकदम अपनी चीज है अथवा ईश्वर प्रदत्त है। यह पूर्व जन्म के पुण्य का फल है या पैतृक अधिकार है। हम यह सब मानकर चुप हो जाते हैं, लेकिन जब सुमित्रानंदन पंत जैनेन्द्र कुमार निराला जैसे प्रतिभा संपन्न लेखकों को आज पहले से निकृष्ट लिखते हुए देखते हैं तो जानना चाहते हैं कि वह ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा कहाँ गई। होना तो यह चाहिए कि अनुभव और वय के अनुसार उनकी रचनाओं में प्रवणता थी, लेकिन यहाँ तो क्रमशः ह्रास हो रहा है। यदि वह शक्ति लेखक के भीतर से ही आती है तो अब क्यों नहीं आती। इसी सवाल का जवाब केवल प्रगतिशील समीक्षा दे सकती है और देती है। उनका कहना है कि लेखक में शक्ति जनता से आती है। जनता के साथ उसका संबंध जितना ही घनिष्ठ होता है उसमें उतनी ही अधिक रचना शक्ति आती है और उसकी रचना में उतना ही अधिक सौंदर्य बढ़ता है। इसके विपरीत जो ही लेखक अपने उस अक्षर स्रोत से हट जाता है उसकी सारी शक्ति जवाब दे जाती है। हिरण्यकश्यप की तरह उसकी मृत्यु तभी होती है जब उसका पांव धरती से उठ जाता है। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए प्रगतिशील समीक्षा पर भी निष्कर्ष निकलती है कि श्रेष्ठ रचना करने के लिए साहित्यकार को अनिवार्य रूप से जनता का पक्षधर होना ही पड़ेगा। जो लोग यह प्रचारित करते हैं कि साहित्यकार सभी वर्गों से ऊपर होता है और निष्पक्ष होता है और श्रेष्ठ साहित्य रचना के लिए वर्ग हितों से ऊपर उठना जरूरी है, उनकी धारणाओं का प्रगतिवाद सप्रमाण खंडन करता है। वाल्मीकि, व्यास, तुलसी, प्रेमचंद के उदाहरणों से स्पष्ट है कि ये सभी साहित्यकार तमाम वर्गों से ऊपर और निष्पक्ष नहीं होते। इन सभी साहित्यकारों ने पीड़ित, दलित और सताए हुए का पक्ष लिया था और इसी तरफदारी के कारण उनमें उच्च कोटि की मानवतावादी भावनाएं थी। जबकि समाज के स्वार्थों का संघर्ष हो तो मानवता दलित के लोगों के पक्ष में होती है, तटस्थता में नहीं होती। लेकिन इस स्थापना में कभी कभी अपवाद भी प्रतीत होता है, जैसे तुलसीदास ने अपने रामायण में शूद्रों का विरोध किया है और फिर भी उन्होंने इतनी श्रेष्ठ कृति की रचना कर दी, यह कैसे संभव हुआ? परंतु ऐसा करने वाले भूल जाते हैं कि तुलसीदास ने उसी रामायण में गूह, निषाद, शबरी इत्यादि को स्वयं राम द्वारा सुने और सम्मान दिलाया है। इससे पता चलता है कि महाकवि हृदय में नीची बही जाने वाली जातियों के प्रति घृणा का भाव नहीं था। घृणा का भाव उनकी नीचता के प्रति था और यह नीचता उन्हें यदि गुरु का अपमान करने वाले उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला रावण कुमार में भी दिखाई पड़ती थी, वे सहन न कर सके। वस्तुतः उन्होंने नीच कहे जाने वाले लोगों में भक्ति की संजीवनी भरकर उन्हें अमर कर दिया, साथ ही ऊंचे आसन पर ला बिठाया। तात्पर्य है कि महान लेखकों ने वस्तुतः जनता से घृणा नहीं की। जनता से घृणा करके आज तक कोई महान लेखक नहीं हो सका है। यदि कोई महान लेखक अपने वर्ग संघ संस्कारों के कारण कभी इस तरह के विचार प्रकट भी करता है तो भीतर से उसका मानवतावादी विवेक उसके संस्कारों के विरुद्ध दलितों और शोषितों का वास्तविक चित्रण कर जाता है। और यही प्रगतिशील समीक्षा एक और स्थापना करती है, वह यह है कि रचना में सौंदर्य वास्तविकता के अधिक से अधिक चित्रण से आता है। अपने दृष्टिकोण विशेष के बावजूद महान लेखक अपनी व्यापक मानवीय सहानुभूति के द्वारा वास्तविकता के विविध स्तरों पर का व्यापक परिचय प्राप्त कर लेते हैं और उनके चित्रण से रचना महान उठती है। व्यापक सामाजिक संपर्क और अनुभव से लेखक की रचना में रसोद्रेक की अधिकाधिक क्षमता आती है, इसलिए प्रगतिवाद साहित्य में यथार्थवाद को सर्वोपरि स्थान देता है। प्रगतिवाद की मान्यता है कि मन भर कल्पना से छटाक भर वास्तविकता अधिक समर्थ और मूल्यवान है। निस्संदेह कल्पना में भी बहुत शक्ति होती है, लेकिन उसकी शक्ति का आधार वास्तविकता है। कालिदास के मेघदूत में पंत को बादल से जो अधिक स्थायी सहानुभूति है वह इसलिए कि उसमें वास्तविकता अधिक है और इसमें कल्पना। इसी वास्तविकता की व्यापकता तथा गहराई के महाभारत भारतीय का सर्वश्रेष्ठ काव्य बन जाता है। लेखक में वास्तविकता का यह बोध अपनी समसामयिक समस्याओं में भाग लेने से आता है, इसलिए प्रगतिवाद की दूसरी स्थापना यह है कि समसामयिकता के माध्यम से शाश्वत साहित्य की रचना की जा सकती है। अपने समय की समस्याओं से अलग रहकर वह भाग कर कोई शाश्वत साहित्य की रचना नहीं कर सकता। अब यह आगे की बात है कि लेखक अपने युग के समसामयिक वास्तविकता का चित्रण किस प्रकार करता है। स्वाभाविक है कि जो बिना समझे बूझे श्री गोविंददास के इंदुमती उपन्यास की तरह घटनाओं का लेखा जोखा कर डालेगा तो निकृष्ट रचना करेगा, और जो समझ बूझ कर संलग्न बुद्धि से सूक्ष्म मानवीय संबंध और रागात्मक स्थितियों का चित्रण करेगा वह श्रेष्ठ कृति देगा। बहते हुए कणों में जो शक्ति के प्रवाह को पकड़ेगा वह शक्तिशाली तथा शाश्वत महत्व की रचना करेगा, और जो केवल उसे कण गिनकर बटोरता रहेगा और साहित्य का केवल भार बढ़ाएगा। इस तरह प्रगतिशील ने साहित्य की परख के मान को ऐतिहासिक आधार दिया, जहाँ अपनी अपनी रुचि तथा समझ के अनुसार कविता की अच्छी बुराई, श्रेष्ठता निकृष्टता का निर्णय होता था और जो कि प्रयास नहीं हो पाता था, वहाँ प्रगतिवाद ने सबसे पहले किसी रचना के ऐतिहासिक महत्व को जांचने का सुझाव दिया। प्रगतिवाद के अनुसार व्यक्तिनिष्ठा ढंग से किसी रचना का मूल्यांकन कठिन ही नहीं भ्रामक भी है। रचना को उसके ठोस सामाजिक पीठिका में रखकर देखना चाहिए कि वह समाज के विकास में कितना योग देती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी रचना की श्रेष्ठता और निकृष्टता इस बात पर निर्भर करती है कि वह विकासोन्मुख है अथवा ह्रासोन्मुख। व्यक्तिवाद ने समीक्षा के नितांत शुद्ध साहित्यिक मानदंड का विरोध कर स्वस्थ सामाजिक मानदंड की प्रतिष्ठा की। व्यक्तिवाद के अनुसार वह तथाकथित शुद्ध मान साहित्यिक मानदंड भी सर्वथा समाज निरपेक्ष नहीं है, बल्कि वह वस्तुतः समाज के ह्रासोन्मुखी प्रवृत्तियों की छाया है। इस शुद्ध साहित्यिक मानदंड को कुछ लोगों ने शाश्वतता का गौरव दे रखा है। इस काल्पनिक शाश्वतता का खंडन करते हुए प्रगतिवाद ने स्थापित किया कि किसी रचना का शाश्वत मूल्य उसके ऐतिहासिक मूल्य से निहित है, और ऐसे ही ऐतिहासिक मूल्यों से समीक्षा के क्षेत्र में एक परंपरा बनती है, जिसके आधार पर प्राचीन से लेकर आधुनिक साहित्य का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। इस तरह प्रगतिवाद ने समीक्षा के व्यक्तिनिष्ठा भाववादी पूर्वाग्रह तथा जड़ता से मुक्त करके उसके स्थान पर स्वस्थ वैज्ञानिक बोधगम वस्तुनिष्ठ और जनकल्याणकारी ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति की प्रतिष्ठा की। समालोचना के क्षेत्र में प्रगतिवाद की ये कुछ मौलिक और मुख्य स्थापनाएं हैं। इनसे एक हद तक इस युग के सभी आलोचक और लेखक प्रभावित हुए हैं। जनता के साथ वास्तविकता के साथ जिस आलोचक का जैसा संबंध है, उसी के अनुसार ये स्थापनाएं उसके व्यवहार में आ सकी है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी समीक्षा प्रणाली भी परंपरा भी बनी रही है, और उम्मीद है कि निरंतर आलोचना प्रत्यालोचना में इसके सिद्धांत और प्रयोग में वैज्ञानिकता ही आएगी। कविता कहानी उपन्यास और आलोचना में प्रगतिवाद जिस तरह अभिव्यंजना हुई, उसे देखते हुए त्रुटियों के आधार पर कहा जा सकता है कि छायावाद के बाद की यह प्रमुख और प्रगतिशील साहित्य धारा है। इसकी अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियों की तुलना में कुछ लोगों को इसमें अधिक खचाई अनगढ़ता तथा कम स्थायित्व प्रतीत हो सकता है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि वाले विचारक जानते हैं कि आज जो अधिक टिकाऊ किंतु ह्रासोन्मुख दिखाई पड़ रहा है, उसकी अपेक्षा उसका महत्व कहीं अधिक है जो आज कम टिकाऊ किंतु विकासोन्मुख है। इस दृष्टि से देखने पर प्राण शक्ति और भविष्य की संभावना प्रगतिशील साहित्य में सबसे अधिक है। छायावादी कविता, प्रेमचंद का साहित्य और शुक्ल जी की आलोचना के मुकाबले आज के प्रगतिशील साहित्य को रखकर सिर धुनाना बुद्धिमानी नहीं है। अतीत सुंदर है, लेकिन लौटाया नहीं जा सकता। भक्ति काव्य की तुलना में छायावादी कविता भी तो थोड़ा नीचे पड़ता है, और कालिदास के मुकाबले भक्ति काव्य भी तो कम तुलता है, लेकिन इसे देखकर कोई विलाप नहीं करता। श्रेष्ठ साहित्यकार रोज नहीं पैदा होते, और न श्रेष्ठ कृतियाँ हर क्षण लिखी जाती हैं। वे संपूर्ण ऐतिहासिक विकास का परिणाम होते हैं, उनके पीछे जाति उत्थान की शक्ति होती है। इधर प्रगतिवाद जिस जनजागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ, अभी वह जनजागरण के विकास के मार्ग में है और अभी वह परिणति को प्राप्त नहीं कर सका। ऐसी दिशा में हम शाश्वत साहित्य के अभाव में बालकों की तरह आंसू बहाना छोड़कर यदि दृढ़ता के साथ जनता के प्रति और अपने प्रति उत्तरदायित्व पूरा करते चले तो अधिक रचनात्मक कार्य कर सकेंगे। प्रगतिवाद के विषय में आज के युग दृष्टा समीक्षक आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी का कथन केवल भविष्य की संभावना की ओर ही नहीं, बल्कि वस्तु स्थिति से जो संभावना प्रकट होती है उसकी ओर भी संकेत करता है। इनोटेड कामा, प्रगतिशील आंदोलन बहुत महान उद्देश्य से चलित है। इसमें सांप्रदायिक भाव का प्रवेश नहीं हुआ है तो इसकी संभावनाएं अत्यधिक है। भक्ति आंदोलन के समय जिस प्रकार एक अदम्य दृश्य आदर्श निष्ठा दिखाई पड़ी थी, जो समाज को नए जीवन दर्शन से चालित करने का संकल्प वहन करने के कारण अप्रतिरोध शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी, उसी प्रकार यह आंदोलन भी हो सकता है। इन ऑर्डर कामा 1।